का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी दिग्वल्य। जैसे ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी, न जाने कब दिवाकर अतीत की यादों में खो गया। उसे रह रहकर वो दिन याद आ रहा था जब उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का अंतिम दिन था। दिवाकर बचपन से ही पढ़ाई में चारों भाई बहनों में सबसे होशियार था और उसके अच्छे अंकों के कारण शहर के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नंबर आना स्वाभाविक ही था। परंतु उसके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी अपनी सीमित आय में दाखिले के पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाए थे। दिवाकर के सभी दोस्तों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। दिवाकर को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। जिन लड़कों का रैंक उससे काफी कम आया था, उन्होंने भी दाखिला करवा लिया था। दिवाकर परेशान हालत में इधर से उधर घूम रहा था। दिवाकर को परेशान देखकर आखिर उसकी मां से रहा नहीं गया और वो पिताजी को बुलाकर कहने लगी, आप बेशक हार मान लें, पर मैं अपने होनहार बेटे का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी और उसका सपना जरूर साकार करूंगी। पिताजी बीच में ही खींचते हुए बोले, तुम क्या करोगी? कभी स्कूल की शक्ल भी देखी है जीवन में, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है जो दाखिले के लिए निकाल कर दे दोगी? गढ़ा हुआ खजाना ना सही, पर मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए अपने गहने तो बेच ही सकती हूं। आजकल गहने कौन पहनता है और किस दिन काम आएंगे? पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। पागल तो नहीं हो गई हो? अब क्या मैं तुम्हारे गहने बेचने जाऊंगा? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जब तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो तुम्हारा ही सीना गर्व से फूलेगा, तब सब बातें पीछे रह जाएंगी। इस तरह काफी मिन्नतों के बाद आखिर दिवाकर के पिताजी राजी हो गए और दिवाकर का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। दिवाकर ने अपनी मेहनत और लगन से काफी अच्छे अंकों में डिग्री प्राप्त कर ली और देश की जानी मानी कंपनियों से उसे नौकरी की पेशकश आने लगी। दिवाकर के मामा और ज्योत्सना के पिता गहरे दोस्त थे। उन्होंने दिवाकर की काबिलियत देखते हुए ज्योत्सना के लिए दिवाकर का हाथ मांग लिया। इधर दिवाकर ने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की और उधर उसका विवाह ज्योत्सना से हो गया। इस तरह उसने अपनी जिंदगी के दो सफर एक साथ शुरू किए। दिवाकर को एकदम से नई जगह पर नौकरी के लिए जाना था तो एक बार उसने अकेले ही जाना बेहतर समझा। दिवाकर ने ज्योत्सना को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो ज्योत्सना, नई नई जगह के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं एक बार अकेले ही चला जाता हूं। जब मैं वहां पर सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा और कंपनी का घर भी मिल जाएगा तो छुट्टी मिलते ही मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक तुम यहीं गांव में माँ और बाबूजी के साथ रहो। इतना क्या सुनना था, ज्योत्सना तो जैसे एकदम से हैरान परेशान हो गई और बोली, दिवाकर, तुम्हारे बिन मैं अकेले यहां नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी गांव के माहौल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जब तक तुम अपना घर वहां व्यवस्थित नहीं कर लेते, मैं अपने माता पिता के पास ही रहूंगी। पूरे एक महीने के बाद दिवाकर ज्योत्सना को छुट्टी मिलने पर जब उसके मायके उसे लेने गया, तो उसे बात बात पर एहसास होने लगा कि ज्योत्सना को अपने माता पिता की शान शौकत का कुछ ज्यादा ही घमंड है। वह बात बात पर दिवाकर के घर के और गांव के माहौल पर कटाक्ष कर देती थी। दिवाकर चाहता था कि वह जब इतनी दूर आया है तो कुछ दिन अपने माता पिता के पास भी रहे, पर ज्योत्सना को तो गांव जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। नई नई शादी हुई थी इसलिए दिवाकर चुप रह जाता। इस तरह दोनों ने आखिर अपने घर से मीलों दूर नई जगह पर अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। तभी दिवाकर का ध्यान भंग हुआ जब अक्षिता कहने लगी,
पापा पापा बहुत प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक लेकर दो ना।
दिवाकर अपनी पत्नी ज्योत्सना को उसके मायके एमए की पढ़ाई करने के लिए छोड़कर आ रहा था। जब ज्योत्सना ने बीए की पढ़ाई खत्म की थी, तभी उसका विवाह दिवाकर से हो गया था। दिवाकर के विवाह को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। अब जब अक्षिता बड़ी हो गई थी तो ज्योत्सना घर पर सारा दिन बोर हो जाती थी, इसलिए दिवाकर ने ही उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी थी। वैसे भी ज्योत्सना शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रही थी। दिवाकर का गांव और ज्योत्सना का मायका पास पास में थे। ज्योत्सना शुरू से ही बड़े शहर के माहौल में पली बड़ी थी। अक्षिता को ज्योत्सना की गैर मौजूदगी में अपनी माँ की कमी महसूस ना हो और किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए, इसलिए दिवाकर अपनी माँ को अपने साथ अपनी नौकरी करने वाली जगह लेकर जा रहा था। दिवाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता था। यहां तक ट्रेन द्वारा पहुंचने में भी काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। दिवाकर को रह रहकर आज फिर अपनी मां की कुर्बानियां याद आ रही थीं। दिवाकर को ज्योत्सना की गैर मौजूदगी में भी अपनी मां के होते हुए अक्षिता और घर की देखभाल में कोई परेशानी नहीं आई। दिवाकर की मां शुरू से ही गांव में रही थी और पिताजी के स्वर्गवास के बाद तो खेतों की जिम्मेवारी खुद अकेले ही संभाल लेती थी। जब कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली बाई छुट्टी पर चली गई और इस बीच दिवाकर भी काफी बीमार पड़ गया, परंतु उसकी मां इतनी धैर्यवान थी कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी काम वाली के ना आने पर भी सब काम अकेले ही कर लेती थी। दिवाकर अपनी मां को काम करते देख अनायास ही सोचने लगता था कि कैसे ज्योत्सना काम वाली के ना आने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी। वैसे भी ज्योत्सना अपने मां बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। दिवाकर को अपनी नौकरी के साथ साथ ज्योत्सना की घर के कामकाज में मदद भी करनी पड़ती थी। दिवाकर बहुत ही सहनशील था और वह किसी भी कीमत पर घर की शांति बनाए रखना चाहता था। ज्योत्सना की गैर मौजूदगी में दिवाकर घर पर और अक्षिता पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता था, ताकि वापस आकर ज्योत्सना को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। अक्षिता की परीक्षा के दिनों में भी दिवाकर उसे ऑफिस से छुट्टी लेकर हर विषय खुद ही पढ़ाता था, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त करके पास हो सके। देखते देखते 3 महीने भी बीत गए और ज्योत्सना अपनी एमए की परीक्षा देकर लौट आई। अपनी तरफ से दिवाकर ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि इतने दिनों के बाद घर आने पर ज्योत्सना को कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई शिकायत करने का मौका मिले, परंतु ज्योत्सना तो जैसे आदत से मजबूर थी। एक तो दिवाकर की मां के साथ उसकी शुरू से ही एक मिनट भी नहीं बनती थी। बस अब तो हर बात पर उसे कोई ना कोई मौका मिल जाता था कुछ ना कुछ बोलने का। ज्योत्सना उसकी मां के आगे खुद को बहुत ही अप टू डेट समझती थी। दिवाकर की मां कुछ पुराने ख्यालात की थी, जैसे कि पुराने समय की अक्सर औरतें होती हैं। ज्योत्सना हर बात पर शिकायत करती और चिड़चिड़ा जाती और दिवाकर को भी भला बुरा कहने लगती। यदि घर की हालत इस तरह से जाहिलों के हाथ से खराब करवानी थी तो क्या जरूरत थी मुझे एमए करवाने की? पीछे से एक भी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। दिवाकर यह सब सुनकर भी चुप रहता। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। मन ही मन वह ये जरूर सोचता कि 3 महीने से उसकी मां ने अक्षता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बीमार होने के बारे में पूछना तो दूर, बल्कि हर चीज में नुक्स निकालना उसकी आदत ही बन गई है। अक्षिता की परीक्षा के परिणाम से भी वह बहुत संतुष्ट नहीं थी और उसने दिवाकर को भी बहुत भला बुरा कहा था। दिवाकर मन ही मन बहुत दुखी होता, यहां तक कि उसकी मां को भी बहुत परेशानी होती और बार बार दिवाकर को वापस गांव छोड़ाने की जिद करने लगती। क्या इसी दिन के वास्ते उसकी मां अपना घर अपना देश छोड़कर उसके साथ इतनी दूर उसका घर देखने के लिए आई थी? यहां पर तो ना उसकी किसी से जान पहचान थी और ना यहां की भाषा वो समझ पाती थी। दिवाकर की मन ही मन ख्वाहिश थी कि घर जाने से पहले वे अपनी मां को कोई सोने का गहना बनवा कर दे। जिन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी और उसे इस काबिल बनाया कि वह अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर सके। ज्योत्सना को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत भड़क गई और कहने लगी, हाँ हाँ इसलिए ही तो कमाते हो ताकि सब अपने गवार रिश्तेदारों पर लुटा सको। मेरे और अक्षिता के प्रति तो जैसे तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। दिवाकर की मां ज्योत्सना की शूल भरी बातें सुनकर बहुत दुखी होती और एक दिन दिवाकर से कहने लगी, दिवाकर तू ये कान के बूंदे यहीं पर रख ले, कल को अक्षिता के काम आ जाएंगे, क्योंकि अब इस उम्र में मैं इन्हें पहनकर कहां जाऊंगी और तुम्हारी पत्नी को भी तसल्ली रहेगी। दिवाकर बिना कहे अपनी मां की बात को समझ गया कि इतनी हल्की चीज उन्हें पसंद नहीं आई थी, क्योंकि गांव में सभी औरतें कान में बड़े बड़े बूंदे पहनती थीं। दिवाकर की मां मन ही मन सोचने लगी कि पहली बार तो दिवाकर ने उसे कोई चीज लेकर दी है और अगर वह गांव जाकर सबको यह कुंवारी लड़कियों के पहनने लायक बूंदे दिखाएंगी तो लोग क्या बात नहीं करेंगे। अगर बेटे ने कुछ बनवा कर देना ही था तो कोई ढंग की चीज तो देता ताकि 4 दिन पहनने लायक तो होती। यह सब सोचकर उसकी मां का मन उदास हो जाता। दिवाकर ये सब बातें देख सुनकर मन ही मन बहुत हताश होता कि वह दिन भर घर से बाहर नौकरी करता है और अपनी तरफ से हर एक को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश भी करता है, फिर भी उसकी भावनाओं का ख्याल रखने की कोई कोशिश नहीं करता। क्या वह पुरुष है इसलिए उसको किसी से शिकायत करने का कोई हक नहीं है? वो क्या चाहता है ये कोई नहीं जानता, ना कोई जानना चाहता है। क्या यही वास्तविक सच है हमारे पुरुष प्रधान समाज का? वह किसी के सामने रो भी नहीं सकता। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। वह अशांत मन से दिग्वल्य में डूबते दिवाकर की ओर देखने लगा, जैसे उसके आसपास अंधेरा फैलने लगा हो, और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी दिग्वल्य। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।